آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ، اہم سبق ہے. اس کو سنتے وقت ہمیں سورۃ المومنون کا ابتدائیہ یاد رکھنا ہوگا. ہم 18 پارے کے شروع میں سورۃ المومنون میں قد افلح المومنون سے لے کر اولئک هم الوارثون تک ایک کردار پڑھ چکے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے. آج اس سورت کے آخر میں، یعنی سورۃ فرقان کے آخر میں، ایک مومن کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. یہ تو میں نے آپ کو ان آخری آیتوں سے جوڑا، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو آج کے سبق میں ہمیں سب سے پہلا میسج کیا ملتا ہے کہ مکی سورت کے اندر جہاد کا لفظ آتا ہے تو جہاد سے کیا مراد ہے. پھر خواہش نفس کے پیچھے لگنے والے کیسے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو معبود بنانا یا اپنی خواہش کو پوچھنا، اس سے کیا مراد ہے. ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ان آیات میں ہمیں روشنی ملتی ہے. انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. دین کی طرف آنا اور اپنا مذاق اڑوانا، یہ کیسے انسان کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے. مختلف ماحول میں دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ مختلف سوچ ہونے کے باوجود جڑ کے رہنا، اس کے کیا اصول ہیں. قرآن کے ذریعے سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے. سسرال کے ساتھ تعلقات کی کیا لمیٹیشنز ہیں. اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے. توکل کی حقیقت کیا ہے. اور پچھلے سبق میں ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ دوست وہ ہو کہ جس کے پاس بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آئے. تو آج اس سبق کے آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کس طرح سے اللہ کی ذات کو بڑا بنانے والے ان کا کردار کیا بنتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں ایک نقشہ دکھے گا. اور خاص طور میں اس سبق میں ہمیں بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنایا جائے، قرۃ اعین جو لفظ ہے اس پہ بات ہے. اور اسی طرح عباد الرحمن کے ذریعے سے کمپلیٹ پیکیج ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. چونکہ اس سبق میں مختلف موضوعات ہیں تو ہم ایک موضوع کی آیات کو اکٹھا لیں گے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو آگے سے آگے لیتے جائیں گے. شروع کریں گے آیت نمبر 41 سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے مختلف نبیوں کا آنا اور قوموں کا ان کو جھٹلانا، اس کی بات تھی. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ فرقان مکی سورت ہے، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں شروع ہو چکی تھی. تو آج کے سبق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں. اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی موکری کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، تو کیا بڑی بات ہے. یہ تو ہوتا ہی رہا اور یہ ہوتا ہی رہے گا. کیسے؟ آیت 41، وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا، اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑا لیتے ہیں یا آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں. قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، پر زور مخالفت کی، اور اس مخالفت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بات سننے کے لیے کبھی سنجیدہ ہی نہ ہوتے، آپ کی دعوت کو ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتے، نہ کبھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے سنتے، نہ اس پر غور کرتے، اور نہ اس کا کوئی سنجیدہ جواب دیتے. اور آپ اپنے اوپر لے کے سوچئے کہ کس کی بات کو بندہ مذاق میں اڑاتا ہے جس کی بات کو انسان اہم نہیں سمجھتا، یا جس کی بات ماننے سے انسان کے اندر تبدیلی لانی لازمی ہوتی ہے، یا وہ شخص اس کی بات عموماً ہم نہیں مانتے کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں. کوئی بھی موٹیو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ساری وجوہات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مکہ والوں کے دماغوں میں اپنی بڑائی بھری ہوئی تھی، وہ خود کو چونکہ بڑا بنانا چاہتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبئی کہنے کی بجائے اوپر سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور مقصد بھی کیا تھا اس مذاق اڑانے کا، کہ نہ اس کی بات سنو اور نہ اس کی بات کو مانو. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیشہ حق کے ساتھ یہی معاملہ رکھا. जुर्रत तो होती नहीं है सरेआम किसी चीज़ को रिजेक्ट करने की, तो फिर इस तरह की बातें करते हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो होता ही था, और ये तो कोई बड़ा नहीं है, और ये तो हमें भी पता है, ताकि उसकी अहमियत को कम कर दिया जाए और दूसरे लोगों को भी कहा जाए कोई इतनी खास बात तो वो नहीं बताते, तो गोया कि वो ऐसी बातें करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। और ना सिर्फ ये कि मजाक उड़ाते थे बल्कि करते क्या थे, अब उनका अगला जुमला ही देख लीजिए, उनकी स्टबननेस और उनके अपने आप को सच्चे साबित करने की बातों से क्या पता चलता है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि जब आप इनको दीन की बात बताते हैं, आपकी बात का तो मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद जाके कमेंट्स क्या पास करते हैं। अगर आप ये जब अगले हिस्से हम पढ़ने लगे ना, इसको लिख लीजिए, उनके कमेंट्स, कमेंट्स पास करते थे, डिस्कशंस करते थे, सामने नहीं बोल सकते थे, और अल्लाह के नबी के सामने बोले भी कौन जिसका नसीब खोटा होगा, तो बाहर जाके क्या बातें करते थे। क्या ये हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, यानी लेट डाउन करने का स्टाइल, ये तो ऐसी बात है, ये कोई, ये रसूल, आर यू सीरियस, वाकई इनकी बात हम सुने, अच्छा, यानी ये अंदाज इख्तियार करते थे ताकि वो दूसरे लोग जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए आपसे दूर हो जाए। आप देखिए कि कुफार की ये बातें कैसी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिख रही हैं, कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये है वो बशख्स जिसकी बात हम माने, इसको जरा नोट कर लें, फिर अगले जुमले पे गौर कीजिएगा आयत 42 में, इन कादल युदिल्लुना नालिहतिना, करीब था कि ये शख्स हमें अपने माबूदों से वर्गला देता, लौला अन सबरना अलैहा, अगर हम इनकी परस्तिश पर साबित कदम ना रहते। दो जुमले हो गए, पहला जुमला के अच्छा ये शख्स है जिसकी बात हम माने, यानी गोया कि इसमें तो कोई खूबी नहीं है, और अब इस जुमले में क्या कह रहे हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं अपने बुरे अकीदों पे, वरना ये तो हमें फिसलाता, ये हमें भी मौलवी बना देता, ये हमें भी तबलीगी बना देता, ये हमें भी मुल्ला बना देता, ये स्टाइल है, यानी ये तो हम बड़े वफादार थे अपने माबूदों के साथ, वरना हम तो इसकी बातों में आकर चल पड़ते। वसौफ़ यालमून हीन यरौन अलअज़ाब, अन करीब जब वो अजाब को देखेंगे तो जान लेंगे, क्या मन अदल्लु सबीला, कि कौन भटका हुआ रास्ते से। ये जो आखिरी जुमला ना, ये अल्लाह ताला का कमेंट है इन लोगों पर, कि ये आज नबी को लेट डाउन करने वाले, नबी की दावत को रिजेक्ट करने वाले, तो लिहाजा ऐसे लोग जो कि ऐसी बातें करके अपने अंदर के गिल्ट की बात करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला हमें उनकी बात सुनाकर यहाँ बताते हैं कि तुम भी तो सोचो, जब कभी कोई तुम्हें दीन की दावत देता है तो फिर तुम्हारा क्या हाल है। कुफार की ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, मुतजाद हैं। पहली बात से तो ये मालूम हो रहा है कि आपको हकीर समझ रहे हैं और मजाक उड़ाकर आपकी कदर गिराना चाहते हैं, गोया कि अल्लाह के नबी ने अपनी हैसियत से कोई ऊंचा ही दावा कर दिया। और दूसरी बात से क्या लगता है कि आपके दलाइल की कुव्वत और आपकी शख्सियत का लोहा मान रहे हैं, भी साख्ता तौर पे इतराफ कर रहे हैं कि बात वैसे ये है कि इसकी बात दिल में बड़ी जाती है, ये तो हम तासुब और हट धर्मी से काम लेकर अपने खुदाओं की बंदगी पर जम गए हुए हैं, वरना ये शख्स तो हमारे कदम उखाड़ देता। आप इससे समझिए कि अल्लाह के नबी की दावत से वहां के लोग किस कदर बौखला गए थे, मजाक भी उड़ाते थे, खिसियाने होते थे, एहसास कमतरी भी बहुत था, हमारी बात तो इतनी लोगों के दिल में नहीं उतरती, अल्लाह के नबी की बातें बड़ी दिल पे उतरती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी इन बातों से ये सिखा रहे हैं कि देखो अंदर से ही अल्लाह के नबी सल्लम की अजमत के कायल थे, और आपकी बातें जो पुरअसर थीं और जो आपकी शख्सियत के अंदर एक जलाल था, इसको वो बिल्कुल मानते थे। तो लिहाजा ऐसे लोग जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करके अपना ही नुकसान करते हैं। सूरत अल-अंबिया में आयत 36 में हम पढ़ चुके, अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या यही है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है, यानी मक्का वाले हों या अरब वाले हों या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के जो लोग हैं, उनका हर दौर में एक मसला रहा है कि हमारे माबूदों से ना हमें हटाना। आज इसको आप यूं समझिए जी, हमारी कब्र परस्ती से ना हटाना, हमारे उर्सों और मेलों से ना हटाना, ये तो शुक्र है हम आ गए। आज भी आप देखिए, खास तौर पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, देहातों में होते हैं या जहाँ भी ऐसे लोग जहाँ दुनियावी तालीम की भी कमी है, तो आप देखेंगे कि उनका ये मिजाज होता है, हाय ये हमारे औलिया अल्लाह की बुराई करते हैं, ये तो जी बुजुर्गों को मानते ही नहीं है, ये तो औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बस इनकी बात ना सुनो। कहीं आप जाएं, लोग इतने खुश होंगे, इतनी बात सुनेंगे, और अगर उसके बाद उनका रिस्पॉन्स ना आए तो समझ लीजिए उन्होंने किसी से आपके बारे में मशवरा कर लिया या आपकी रिसर्च कर ली है। ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ कई बार हुआ है। एक ऐसी जगह थी कि जहां हमने दर्ज किया, यकीन करें कि वही सिस्टर्स की हालत ही, जिन्होंने कभी दर्श नहीं सुने होते वो ऐसी बातें करते हैं कि आज तक तुमने ये सुना नहीं। वहां बैठे बैठे बातें हुई, दौरे कुरान करीब था उस साल का। हमने कहा कि आप चाहें तो आपका ये स्टेशन बना देते हैं, मान गए। इतनी खुशी खुशी और माइक पे आके एक दूसरे को बताइए। और उस जगह की अगर एटमोसफेयर आपको बताऊं तो वहां दर्ज करना भी मुश्किल था, वहां इतना कुछ दीवारों पे लिखा हुआ था। लेकिन मैंने इधर ना देख उधर देख सीधा उन लोगों को देखा, बात की, बहुत अच्छी बात हुई, इतना मजा आया, इतने अच्छे तरीके से, हम इतने खुश उस दिन के। और वो एक मदरसा था भी बिल्कुल अपोजिट सोच वालों का, तो हमने वो बात तो बीच में आने ना दी, किस्सा मुख्तसर खत्म हो गया। ये सारे साथी ऐसे लगे जैसे उछले, पांव जमीन पे नींद के आ रहे। मैंने कहा इतना खुश ना हो, आज वो ही भी सिर्फ तुम्हें सुन के गए हैं, तुम्हारी बातें सुनी हैं, तुम लोगों ने उनसे मिला है, अभी घर जाके देखना इन्होंने मर्दों से भी बात करनी है। इधर वल्लाही वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। दूसरे दिन, तीसरा दिन, फिर साफ उन्होंने कह दिया कि जी हमें लोगों ने बता दिया आप वहाबी हैं। उनमें से एक मेरे साथ लंदन आने को तैयार हो गई थी। उसके बाद शाम को एक और दरसा, कहने लगी मैंने वहां भी जाना है। इतनी माशाल्लाह नाइस लोग, और इतनी माशाल्लाह वो सिस्टर्स में दीन की मोहब्बत थी। तो शाम को भी दर्स में गई, वहां भी उन्होंने सुना, फिर उनके जेब में कुछ क्वेश्चन थे वो जवाब पूछती नहीं। और आखिर वही हुआ कि हमें लोगों ने बताया कि ये वहाबी हैं, इनकी बातों में ना ना। फिर जो हमारी साथी थी उन्होंने कहा कि देखें जो कुरान का तर्जमा आप पढ़ रहे हैं वो आप अपना खोलें, इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगंडा कि ये तुम्हारे तौर तरीके बदल देंगे। आज के सबक में हम देखेंगे कि तौर तरीका अल्लाह को किसका पसंद है, और अल्लाह के नबी ने जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया दुनिया में वो कैसे हुआ। लोरियां सुनाकर, नाते सुनाकर, तराने सुनाकर, जिक्र करके, वजीफे करके, ये जाहिद हम भी जिहादन कबीरा। याद रखिए कुरान की सच्ची दावत के आगे ये दो रिस्पॉन्स हर सोसाइटी में आएंगे। पहले लोग इसको लेट डाउन करते हैं और उसके बाद इसका दिल पे जो असर होता है उसकी बात भी करते हैं। तो लिहाजा हम सब इसके ऊपर अपने लिए अमल की बात लें। कभी भी गुनाह पे स्टबन नहीं होना, शिर्क पे नहीं जमना, और जम के फिर फख्र करना ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसे लोग तो फिर ऐसी चीजों में और भी जाते हैं। अल्लाह ताला ने देखिए आयत के एंड पे कह दिया ना कि हमें पता है और इनको भी लग पता जाएगा कि सीधे रास्ते से भटका हुआ कौन था। ये किसका कमेंट है? अल्लाह ताला का। क्या कि दुनिया में ये मुशरिकीन और गैर अल्लाह के पुजारी इनको तौहीद वाले गुमराह दिखते हैं, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में ये पहुंचेंगे वहां इनको पता लग जाएगा कि इस शिर्क की क्या सजा है, गुमराह कौन था, कौन लोग हैं जो गैरों के दर पे जाके अपनी पेशानियां झुकाते थे या फिर अल्लाह की बात मानते थे। तो फैसले तो क्यामत के दिन होंगे। दुनिया में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मत सोचिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई फैसला नहीं किया हुआ, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन ये सारी बातें खोल देगा। आप सोचिए एक स्टूडेंट को रिजल्ट निकलने के बाद सवालों के जवाब पता चले, क्या फायदा? किस वक्त उस सवाल के जवाब की अहमियत थी? जब पेपर अभी उसके हाथ में। घर जाके तो सबको सवालों के जवाब पता लग जाते हैं, अपनी गलतियां भी पता लग जाती हैं, अपने ठीक काम भी पता चल जाते हैं कि ये गलती कर रहा हूं, ये कर गया हूं। आप अपना रिजल्ट खुद बना सकते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा तो नहीं फर्क होता। क्या बनेगी उस दिन लोगों की जब उनको अपने रिजल्ट कयामत के दिन पता चलेंगे कि हम किस बात पे खुशियां मना रहे थे। देखिए लफ्ज क्या, सबर ना, सबर दो किस्म का होता है, सबर अनितात, इतात के कामों पे सबर, और सबर अनिल मासियत, गुनाहों पे सबर। ये आप कहते हैं ना कि नेकी करें तो सबर करना पड़ता है, तो क्या गुनाह करने में सबर नहीं करना पड़ता? इतनी कड़वी शराब पीते हैं फिर नशा आता है, इतने खतरों से गुजर के चोरी करके डाका मार के घर आते हैं फिर उनको दौलत मिलती है, क्या गुनाह के काम या नाफरमानियों के काम बस ऐसे ही हो जाते हैं? आप इस कुरान को पढ़ने पे अगर 4-5 घंटे दिन के लगाते हैं तो आप देखिए कि जो म्यूजिक के एक तालीम ले रहे होंगे या शराब बनाने का कोई काम सीखेंगे या कोई और गलत काम करेंगे वो बच्चे ऐसे ही बढ़ जाते हैं। हर काम पे मेहनत है, तो कितना खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसको इस किताब को पढ़ने पे सब्र करना पड़े। कभी आपको इस कोर्स की कोई चीज़ मुश्किल लगे, जिसमें सबसे बड़ी आपकी मुश्किल सुबह जल्दी आना, मजबूरियों को, परेशानियों से निकल कर, बिस्तर से निकल कर। बिस्तरों से तो हम निकल आते हैं, हम कई और चीज़ों से हम नहीं निकलते, और कुछ बिस्तरों से नहीं निकल आते। लेट निकलते हैं तो लेट काम होते हैं, और लेट निकलते क्यों, क्योंकि रातों को देर से सोते हैं। तो जिस तरह से इस किस्म के काम होंगे, उस वक्त फिर ये सोचा करें कि मेरा ये सब्र किस बात का है, क्या अल्लाह ताला मेरा ये अजर रखेगा, नहीं रखेगा। खुशियों से अल्लाह के रास्ते में मुश्किल सहा करें। सबक याद करना है, तर्जमा याद करना है, तजवीद दोहरानी है, टेस्ट देने हैं, असाइनमेंट करनी है, रोते हुए ना करें, खुशियों के साथ करें। आप देखेंगे कि गम खुशियों में बदल जाते हैं। अब ऐसे लोग जिनको अल्लाह के नबियों की दावत पसंद नहीं आई, उनका हाल क्या है? आयत 43 बड़ी अहम आयत है, इसका टॉपिक लिख लीजिए, ख्वाहिश नफ्स की पूजा। अरअईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, आयत 43, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया? आ क्या रईता, तूने देखा मन उसको, इत्तखज़ा, जिसने बना लिया, इलाहहु, अपना माबूद, किसको, हवाहु, अपनी ख्वाहिश को। सारे लफ्ज आपने पहले बहुत दफ़ा पढ़े हुए, इलाह वो जिसको पूजा जाए या जो हैरान कर दे। हवा कहते हैं ख्वाहिश को, खाविया इसी से है, जहन्नम की वो वादी जहाँ ख्वाहिश प्रस्त लोग होंगे। हवा चल रही है, एयर, विंड, ब्लोइंग, ये सारे हवा में है। आप इमेजिन करें इस आयत को पढ़ते हुए कि कोई खुद को हवाओं के दोष पे छोड़ दे, जहाज का इंजन बंद कर दें और कहें कि जिधर हवा चलती है इस जहाज को फेंक दें। किस समंदर में गिरेगा जहाज या किस पहाड़ की चोटी पे गिरेगा? और किसी भी बहरी जहाज का इंजन बंद कर दें और समंदर में चलती हुई हवाओं पर छोड़ दें, यूं जहाज कांपते हैं। रात को जब वो इंजन बंद कर देते हैं जो भी गैस बचाने के लिए या कुछ, तो रात को जहाज यूं करते हैं। तो मैंने कहा दिन में तो इतने झटके नहीं थे, अब क्या कहते? इसलिए कि रात को जहाज का इंजन बंद कर देते हैं क्योंकि हवाएं इतनी तेज होती हैं समंदर की, और चूंकि ये जहाज हवा के रुख पे जा रहा है तो फिर जहाज को बंद कर देते हैं, जैसे गाड़ी को कोई न्यूट्रल में कर दें तो वो खुद हवा उसको यूं फेंकती है। तो हवा तो ज़रा तेज चलेगी, तो कभी यूं भी होगा तो कभी यूं भी होगा, उसको इमेजिनेशन मिले हैं। शिर्क एक बहुत अहम किस्म जो हम सबको अपने गिरेबानों में झांकने की दावत देती है। बड़े बड़े तौहीद परस्त होने के दावे करने वाले इस शिर्क से नहीं बचे हुए। शिर्क सिर्फ ये नहीं होता कि फलां की मदद और फलां जिंदाबाद और या अली मदद और या फलां और या बाबा जी और पीर जी और कब्र परस्ती, अल्लाह के किसी वाज़े हुक्म को सुनकर ख्वाहिश नफ्स पर अमल पैरा होना, ये शिर्क है। लिख लीजिए, इंसान को इसका नफ्स हर वक्त दुनिया में माल समेटने, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने, हसीन बनने, हराम को खूबसूरत तरीके से पुरकशिश बनाने की मुख्तलिफ रीजंस बताता रहता है। मसलन आप देखें आज के दौर में, जी बैंक का सूद हराम नहीं है। पुराने दौर में सूद इसलिए हराम था कि गरीबों का इस्तेसाल था, गरीबों का खून उछलता था। आज के बैंकिंग सिस्टम में तो ये सब नहीं होता, और जी आज के दौर में तो बैंक के बगैर कोई काम नहीं चलता, और आज के दौर में बैंक से तावन ले लें तो कोई हरज की बात नहीं, और सूद लेना मना है ये दिखाओ कुरान में कि देना कहाँ मना है, बल्कि हम तो मजबूर हैं। और यहाँ तक कि ज़कात वो कर्जदार पे तो होती नहीं जिसके सर पे कर्ज है, तुम्हारे सर पे तो लाखों का कर्ज है तो हम ज़कात ही नहीं देंगे। ये हैं वो बातें। अरअईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालना और अपने नफ्स की बात मान लेना, अपने नफ्स का बंदा बनना। याद रखिए नफ्स उसी का मुता होता है जिसकी इताअत करे। तो नफ्स तो उसका मुता, मुता कौन होता है? अती उसे, मुता जिसकी इताअत की जाए। मती कौन होता है? जो इताअत करे, सरेंडर्ड। और मुता कौन है? टू बी सरेंडर्ड, जिसके लिए, और जो जिसकी बात मानेगा वो सीखे। देखिए सूरत बकरा में हम सब सुनते हैं क्या, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, कहते हैं ना दिन रात। इबादत दरअसल मुकम्मल गुलामी का नाम है। जिस तरह एक गुलाम अपने आका का हर हुक्म मानने का पाबंद है ना, इसी तरह एक बंदे यानी अब्द पर भी ये लाजिम है कि वो अपने माबूद की मुकम्मल फरमाबरदारी करे, इसके किसी हुक्म से सर ना उठाए। आपने सूरत मोमिनून आयत 48 में फिरौन का एक जुमला सुना था कि वक़ौमुहुमा लना आबिदून, याद है? मूसा के बारे में क्या ताना दिया था कि मूसा और हारून की जो कौम है ना, ये हमारी मती है। क्या फिरौन को सजदा करते थे? नहीं, कहता था ये हमारी बात मानते हैं, इनके दिमागों पे हमारा सहर है। तो इबादत क्या होती है? किसी की गुलामी और इताअत का फंदा गले में डाल लेना। कोई शख्स जुबान से तौहीद परस्ती का दावा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह के वजीफे करे, चिल्ले काटे, लेकिन अमलन इताअत और फर्मा बरदारी अपने नफ्स की करें, तो हकीकत में वो तौहीद परस्त नहीं, वो नफ्स परस्त है। और इसका नफ्स ही दरअसल इसका माबूद है। ये सारी आयतें जो है ना, आगे कहा इतारी, उन सब का इंट्रो है कह लें, जिसका कई इब्तदाइया है। यहाँ अल्लाह ताला वो सारी बातें पेश कर रहे हैं जिसकी वजह से आज लोग अल्लाह की इस किताब के साथ दुनिया में नहीं जी सकते। तो नफ्स की ख्वाहिश, अल्लाह ताला कहते हैं अफअंता तकून अलैहि वकीला, तो क्या है नबी, आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी ले सकते हैं? यानी जो नफ्स के पीछे लग गया, ख्वाहिश परस्त हो गया, क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि ये जन्नत में जाएगा? तो जाए ले ले, हम कहते हैं नहीं जाएगा। देखिए कितनी सख्त आयत है। यानी जो बंदा ख्वाहिशों के पीछे है, फिर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे ले के जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो पिछला ही सबक याद कर लीजिए कि इन नहाज कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्ना कौमी, ये है वो कौम जिसने इस कुरान को छोड़ा हुआ। तो नबी सिफारिश की बजाय शिकायत लगाएंगे।